प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान। उसमें मैं पाता शरण स्थान। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। पाप की लहरों से घिरा हुआ था, ना कोई मंजिल और ना किनारा। पाप की लहरों से घिरा हुआ था, ना कोई मंजिल और ना किनारा। वो आया बनकर मेरा सहारा, वो आया बनकर मेरा सहारा। पाप की लहरों से मुझे उबारा, पाप की लहरों से मुझे दोबारा। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। जीवन था मेरा पाप की खाई, सब दूर निराशा रहे अंधेरी। जीवन था मेरा पाप की खाई, सब दूर निराशा रहे अंधेरी। क्रूस की ओर जब दृष्टि उठाई, क्रूस की ओर जब दृष्टि उठाई, किरण जीवन की हृदय में आई, किरण जीवन की हृदय में आई। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान। उसमें मैं पाता शरण। अब कोई डर नहीं और ना निराशा, यीशु ही के अब कोई डर नहीं और ना निराशा, यीशु ही केवल धन्य आशा। शीघ्र वो आए लेने मुझे, शीघ्र वो आए लेने मुझे, यही है दिल की अभिलाषा, यही है दिल अभिलाषा। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए श्रोता मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में इस पत्री के माध्यम से पौलुस ने हमें बताया कि हम एक कलीसिया हैं, अर्थात हम विश्वासियों को कहा गया है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, डाह नहीं करना है, और हमें बताया गया है कि हमें एक दुल्हन के रूप में उसका इंतजार करना है, अपने आप को तैयार करना है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 5 उसके 3 पद से अध्ययन आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन फिर से एक बार कर सकें। हमारी विनती है कि आज की इस अध्ययन पर आप अपनी आशीष प्रदान करें, हम इससे हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें, ताकि जो कुछ भी आज हम अध्ययन करते हैं समझ सकें, ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में लागू करने पाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं या किसी तकलीफ और तनाव में हैं, दबाव में हैं। आप उनकी सुधि लीजिए, उनकी सहायता कीजिए, अपनी शांति और आनंद प्रदान कीजिए। इस समय हम सबको अपनी आशीष दीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए हम इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसके 3 और 4 पद को पढ़ें। लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लजता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। ये पाप अविश्वासियों में आम अभ्यास है। आज के संसार में भी ये पाप एक आम अभ्यास है। ये सब अभ्यास नैतिकता के निम्न स्तर पर हैं। पौलुस कहता है कि परमेश्वर की संतान इसे अपने जीवन का भाग नहीं बना सकती। इसमें जरा सी भी ढील दी जाए तो वह आत्मा को दुखी करती है और बीज उत्पन्न करती है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और फिर से कहता हूं कि यदि आप पाप में गिरकर परेशान और बेचैन ना हो तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं। इसका विकल्प नहीं है। परंतु यदि आपके मन में पाप बोध है तो आप उड़ाव पुत्र की नाई पश्चाताप करके स्वर्गीय पिता के पास जा सकते हैं। आप अपने पिता की संतान हैं और संतान ही तो घर की ओर लौट कर आता है। मैंने आज तक किसी सुअर के बारे में नहीं सुना कि वह घर लौटकर पिता के पास आना चाहे। यहाँ जिन पापों का उल्लेख किया गया है वे एक अभक्त मनुष्य का चित्रण है और कम दबाव के पाप हैं। जब पाप परमेश्वर के समक्ष इन पापों को स्वीकार करते हैं, तब आप इन्हें बांधकर परमेश्वर के हाथ में नहीं दे देते, परंतु आप प्रत्येक पाप का अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी की बुराई करके उसे दुख पहुंचाते हैं तो परमेश्वर से कहें कि यह आपका पाप है। जब आप परमेश्वर के समक्ष अपने किसी विशेष पाप या पापों का नाम लेकर अंगीकार करते हैं तो उसके साथ आपकी सहभागिता पुनः स्थापित हो जाती है। इन पापों में विश्वासी का कभी न कभी गिरना स्वाभाविक है। ऐसे समय पर परमेश्वर से कह देना चाहिए कि आपने यह पाप किया है। फेनेलोन ने इसी बात को इस प्रकार से कहा है, परमेश्वर से सब कुछ कह दें जैसे कोई प्रिय मित्र के सामने अपना दिल खोलकर रख देता है, अपने सुख दुख और सब कुछ। उसे अपनी परेशानियां सुनाएं कि वह आपको ढाढ़स बंधाए। उसे अपने हर्षातिरेक भी बताएं कि वह आपको नम्रता प्रदान करे। उसे अपनी लालसाएं भी बताएं, वह उन्हें शुद्ध करे। उसे अपनी अरुचि भी बताएं कि वह आप पर जय प्रदान करे। उससे अपनी परीक्षाओं का उल्लेख भी करें कि वह उनसे आपकी रक्षा करे। उसे अपने हृदय के घाव दिखाएं कि वह उन्हें भर दे। भलाई के प्रति अपनी उदासीनता, बुराई के प्रति अपनी भ्रष्ट अभिरुचि, अपनी अस्थिरता आदि सब कुछ उसे बता दें। उसे बताएं कि आपका स्वार्थ कैसे किसी के लिए अन्याय का कारण बनता है, निस्सारता आपको कैसे अनिष्ट बनाती है और घमंड आपको स्वयं से तथा अन्यों से कैसे छलता है। मेरे प्रियो, यदि आप अपने सब दुर्बलताएं, आवश्यकताएं, परेशानियां इस प्रकार व्यक्त करेंगे तो आपके पास कहने के लिए कमी नहीं होगी। आपका विषय कभी समाप्त नहीं होगा, वह नया होता चला जाएगा। जिन मनुष्यों में छिपाने के लिए कुछ नहीं होता उसका वार्तालाप कभी समाप्त नहीं होता है। वे सोच सोच कर शब्दों का उपयोग नहीं करते क्योंकि उनके पास छिपाने वाली कोई भी बात नहीं होती है और न ही उन्हें विषय की खोज करना पड़ती है। वे बिना सोचे मन की गहराई से बातें करते हैं। जो विचार उनके मन में उठते हैं उन्हें वे व्यक्त कर देते हैं। धन्य हैं, आनंदित हैं वे जो परमेश्वर के साथ ऐसा घनिष्ठ एवं अनारक्षित वार्तालाप करते हैं। विश्वासियों की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वे परमेश्वर के समक्ष अपने मन में जो कुछ है सब कुछ कह दें। अब कोई कहेगा, विश्वास नहीं होता कि एक विश्वासी ऐसा कर सकता है जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है। मेरे मित्रों, यदि आप अनुभवी पास्टर हैं तो आपको स्वयं ही पता होगा कि विश्वासी इन पापों में गिर जाते हैं। अनेक विश्वासी इन पापों को सोचते हैं कि वे अक्षम्य पाप है, परंतु नहीं, परमेश्वर के पास लौट आने का मार्ग सदा खुला रहता है। वे विचार को आज स्वीकार्य माना जाता है। इस पाप को बुरा नहीं माना जाता है। जब घोर अनैतिकता प्रवेश कर रही थी तो उसे नई नैतिकता कहा जाता था। मैं बाइबल की बात ही मानूंगा, व्यभिचार पाप है और व्यभिचारी परमेश्वर की संतान नहीं है। अब कोई कहेगा, आप तो कह रहे थे कि अपने पाप का अंगीकार करके आप परमेश्वर की सहभागिता में लौट सकते हैं। जी हाँ, यह सही है, परंतु परमेश्वर की संतान पाप का अंगीकार करके पाप में नहीं रहती। यह स्पष्ट बात है कि ऐसा मनुष्य परमेश्वर की संतान हो ही नहीं सकता। अशुद्ध अर्थात हर प्रकार की अनैतिकता, लोभी एक उमंग धन संपदा के लिए ही नहीं बौद्धिक वरीयता भी है, आवास या पद प्रतिष्ठा की भी, यह धन लोलुपता भी है। कहा जाता है कि कंजूस सोचता है कि पैसा समतल है इसलिए उसे एकत्र करो और उड़ाओ, पुत्र सोचता है कि पैसा गोल है उसे लुढ़काओ। अब चाहे आप पैसे को एकत्र करें या खर्च करें, लालसा या लोभ का अर्थ है अपने स्वार्थ के निमित्त धन संचय करना। कुछ सब प्रकार का मान सम्मान एकत्र करना चाहते हैं। मैं ऐसे प्रचारकों को भी जानता हूं जो धन लोलुपता के दोषी नहीं है, परंतु वे पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। वे अपनी कलीसिया में, अपने समुदाय में बड़ा नाम कमाना चाहते हैं। लोभ हमारे पुराने स्वभाव का गंदा पाप है। तुम में चर्चा तक न हो, अर्थात इनका उल्लेख करते समय ऐसा प्रकट न हो कि आप इन्हें स्वीकार करते हैं या इनकी मनोकामना करते हैं। स्पष्ट जानिए कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आगे है अशुद्ध काम, अर्थात चरित्रहीनता की पराकाष्ठा। आज जो घिनौनी बातें सुनने में आती हैं, तब है मूर्ता की बातचीत, अर्थात पाप करके गर्व करना। क्या आपने कभी किसी को बड़े घमंड से कहते हुए सुना है कि उसने पार्टी में कितनी शराब पी थी? किसी को व्यभिचार पर घमंड करते हुए सुना है? यह सब मूर्ता की बातें हैं। ठट्ठे की, इसका अर्थ चुटकुले सुनाना नहीं है, इसका अर्थ गंदी कहानियां सुनाना है। धन्यवाद ही सुना जाए, यही मसीही वार्तालाप का विषय होना है। मैं एक अति उत्तम विश्वासी के साथ फुटबॉल के मैदान में खेलने के लिए जाता था, परंतु कभी कभी कोई अविश्वासी हमारे खेलने में आ जाता था। जब उसका खेल बिगड़ता तो वह सबको गालियां देता है, कोसता है, जबकि मेरा मित्र सदैव कहता है यह की स्तुति करो, प्रभु को धन्य कहो। वह अविश्वासी पूछता है, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेरा मित्र पूछता है, आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ में क्यों लेते हैं? वह कहता है, मेरी आदत हो गई है। मेरा मित्र कहता है, मेरी भी आदत हो गई है। मैं जब जब भी किसी को कोसते सुनता हूं, तब मैं परमेश्वर को किसी न किसी बात का धन्यवाद देता हूं। मैं यहां संतुलन बनाए रखना चाहता हूं। उसके इस व्यवहार ने अनेक बार लोगों को कोसने, गालियां देने से रोका है। हम विश्वासियों के लिए धन्यवाद देने का अभ्यास अच्छा है। मेरे मित्रों, हम इफिसियों के पत्र 5:5 में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। यहाँ पर स्पष्ट है कि नए जन्म से वंचित मनुष्य जो इन पापों में है, वह प्रभु और परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं है। एक विश्वासी यदि ऐसा करेगा तो वह संसार से कहता है कि वह परमेश्वर की संतान नहीं है। शारीरिक चरित्रहीनता में निर्वाह करने का अर्थ है परमेश्वर की संतान होने से वंचित होना। इफिसियों के पत्र 5:6-7 में लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। ध्यान दीजिए, इन पापों के कारण नए जन्म से वंचित मनुष्यों पर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की संतान परमेश्वर की अप्रसन्नता और क्रोध भाजक बने बिना इन पापों में भागी नहीं हो सकती है। यदि कोई मनुष्य परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर उसे दंड अवश्य देगा। आपको स्मरण होगा कि उसने दाऊद को दंड दिया था, उसे छोड़ा नहीं, उसका दंड उससे कहीं दूर नहीं गया। 1 कुरिन्थियों की पत्री 11:31-32 में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। यदि आप पाप करके बच गए तो आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको संसार के साथ ही दोषी ठहराएगा। इसका अर्थ है कि आपको उद्धार प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आप परमेश्वर की संतान होकर ऐसे काम करेंगे तो परमेश्वर आपकी ताड़ना करेगा। यदि परमेश्वर आपकी ताड़ना न करे तो आप संकट में हैं। इसका अर्थ है कि आप उसकी संतान नहीं हैं। परमेश्वर शैतान के संतान की ताड़ना नहीं करता है। इफिसियों की पत्री 5:8-10 में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। पौलुस विश्वासियों को उनके मन फिराव से पूर्व की स्थिति समझा रहा है। वे अंधकार में ही नहीं थे, वे स्वयं अंधकार थे। हम नए जन्म से रहित मनुष्यों को अंधकार के पास या अंधकार में वास करने वाले कहते हैं, परंतु वास्तव में उनकी दशा इससे भी बुरी थी। एक बार मैं अकेला ही रास्ते पर चला जा रहा था, मुझे एक मित्र मिला जो उधार से वंचित था। उसकी बातों से मुझे समझ में आया कि वह अंधकार में वास ही नहीं कर रहा था, वह स्वयं अंधकार था। ओह, उसका जीवन कैसा भयानक था। अब प्रभु में ज्योति हो, अर्थात हमें उसे प्रकट करना है जो जगत की ज्योति है। पौलुस ज्योति फल का उल्लेख करता है, वह उन गुणों की चर्चा करता है जो सदैव ज्योति के साथ प्रकट होते हैं। सब प्रकार की भलाई अर्थात दया, धार्मिकता अर्थात नैतिक औचित्य, सदाचार और सत्य, मुख्यतः विश्वास योग्यता और सच्चाई। विश्वासी को इस आधार पर अपना जीवन सिद्ध करना है कि परमेश्वर की इच्छा में होने का प्रमाण प्रकट करे और इस प्रकार परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आपको स्मरण होगा कि पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है कि जैसा वह ज्योति में है वैसा ज्योति का आचरण रखो। किसी ने मुझसे पूछा कि परमेश्वर की ज्योति में आचरण करने का अर्थ क्या है। इसकी व्याख्या यहाँ परमेश्वर के वचन में है, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य अर्थात विश्वास योग्यता और सच्चाई। यह सप्ताह के 7 दिन हमारी भलाई होना चाहिए, केवल रविवार को ही नहीं, 24 घंटे 30 मिनट प्रति घंटे। मेरे प्रियो, यह हम सब के लिए आवश्यक है। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसके 11 से 13 पद में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। हमें अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना है। परमेश्वर की संतान अंधकार के कामों में सहभागी नहीं हो सकती। भौतिक संसार में भी अंधकार और ज्योति का मेल नहीं होता है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हमें उनके बारे में बात भी नहीं करना है। मेरे प्रियो, हमें उनकी उलाहना अर्थात उनमें सुधार करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वासी एक सुधारक बन जाए, इसका अर्थ है कि विश्वासी अपने जीवन में ज्योति के द्वारा अंधकार के कामों के लिए झिड़के। ज्योति अंधकार की छिपी बातों को प्रकट करती है। अंधकार प्रचार से दूर नहीं होता है, उसे समाप्त करने के लिए ज्योति की आवश्यकता होती है। कुछ लोग उद्धार से वंचित मनुष्य को कहते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे मित्रों, यह अंधकार दूर करने की विधि नहीं है। आपको स्वयं ज्योति बनना है। आप मनुष्य से नहीं कह सकते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे पत्र मिलते हैं जिनमें लिखा होता है कि पापों के विरुद्ध प्रचार करना चाहिए। जी नहीं, मेरा काम है परमेश्वर के वचन की ज्योति को जलाना, अर्थात परमेश्वर जिस बात को उचित कहता है उसे प्रकट करना। आप किसी को भाषण देकर या अनुचित का प्रचार करके परमेश्वर के निकट नहीं ला सकते। यह आपका काम नहीं है कि किसी का आचरण बदले, वह नहीं बदलेगा। बदलाव लाने के लिए उसे नया जन्म लेना आवश्यक है। आप उसे उंगली दिखाकर नहीं कह सकते कि ऐसा मत करो, बुरे मनुष्य मत बनो। आपको ज्योति बनना है और ज्योति अंधकार को दूर करती है। एक बार एक महिला ने मुझे बताया कि उसका पति उद्धार से वंचित है और मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। मैंने निष्ठापूर्वक प्रार्थना की। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वह आराधना में तो आता है परंतु प्रभु यीशु को ग्रहण करने का निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। उसने मुझसे कहा, मैं सुबह नाश्ते के समय रो रो कर उससे प्रभु को ग्रहण करने के लिए कहती हूँ, रात के भोजन पर मैं फिर रो रो कर उससे यही बात कहती हूँ। मैं सोचने लगा, दिन में दोनों बार यह रोती रहती है, स्त्री के साथ भोजन करना कैसा होगा। मैंने उससे कहा, वह उससे अब कभी यह चर्चा ना करे, उसे अच्छे से अच्छा भोजन दे और यथा संभव उसके साथ मधुर व्यवहार रखे। उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो गवाही देना है। देखा आपने, वह गवाही देने का अर्थ ही नहीं समझती थी, परंतु उसने मेरी बात मानी। उसने अपने पति को भाषण देना बंद कर दिया और परिणाम यह हुआ कि 6 महीने में ही उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया। अब तक वह एक गलत प्रचारक का प्रचार सुन रहा था। वह ज्योति बनने की अपेक्षा उस पर प्रचार कर रही थी। सदा स्मरण रखें कि अंधकार भाषण देने से या प्रचार करने से दूर नहीं होता है, अंधकार ज्योति से ही दूर होता है। इफिसियों की पत्री 5:14 में लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मेरे प्रियो, यह एक आज्ञा है जो मानवीय सामर्थ्य में संभव नहीं। मनुष्य मरकर कैसे जी सकता है? मनुष्य आत्मिक मृत्यु से पुनर्जीवित कैसे होगा? केवल परमेश्वर ही नया जीवन दे सकता है। मेरे विचार में पौलुस के कहने का अर्थ है कि विश्वासियों को आत्मिक सुषुप्त अवस्था से जागृत होना है, क्योंकि आज बहुत सारे मसीही ठंडे और गर्म गुनगुने हैं। वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और पौलुस इस वचन के द्वारा इसी बात को हमें स्मरण दिला रहा है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आपका मसीही जीवन किस प्रकार का है, लेकिन आज के इस वचन के प्रकाशन में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम ज्योति बने और दूसरों के लिए हम रोशनी प्रदान करें, उनके जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
पापों से धोकर तूने मुझे, मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। पापों से धोकर तूने मुझे, मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं।